Having a healthy lifestyle is very essential for any person, and more important for that person who takes spiritual life very seriously. All those who are practicing spiritual life, for them healthy lifestyle is very important, because they understand that in healthy life, healthy body, only healthy spiritual life can exist. If somebody's body is very sick or very weak or not very strong, he can't perform spiritual life, can't serve the Lord, can't chant his round properly, cannot focus on the chanting of the holy name. So for the spiritualists, those who are spiritual people, knowing well that our body is a very important equipment or instrument for our progress to God. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि शरीर को स्वस्थ रखना, कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ लेते, मैं हिंदू बोल रहा हूँ, शरीर को स्वस्थ रखना सबके लिए आवश्यक है, खास करके उन लोगों के लिए जो भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि शरीर मनुष्य का इतना महत्वपूर्ण है, हमारा अभी रोज़ सुबह की प्रार्थना में चर्चा चल रही है कि गर्भपात क्यों नहीं करना चाहिए। गर्भपात केवल मनुष्य करता है, और मनुष्य का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान की प्राप्ति करने की सुविधा केवल इस शरीर में दी गई है, और इस शरीर को संभालते हुए ही, इसका पूरा लाभ लेते हुए आपको भगवान के पास पहुंचना है। स्कूटर की तरह है, आपको जाना कहीं पहुंचना है, जब तक स्कूटर पूरा सर्विस्ड नहीं है, पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, टायर में हवा नहीं है, टक्के में पेट्रोल नहीं है, कुछ आइटम बिगड़ गया उसका, तो आपको जाना कहीं, अच्छा प्लान बनाया आपने, लेकिन आप वहाँ पहुँच नहीं सकते क्योंकि आपका व्हीकल जो है वो डिफेक्ट में है। उसी तरह से ये मनुष्य का शरीर जो है वो यही ऐसा एक व्हीकल है जो आपको भगवान तक पहुँचा सकता है, किसी भी धर्म के अनुसार, किसी भी धर्म के आप भक्त होंगे, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना मनुष्य का जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और अधिकतर लोग हमने देखे हैं, भक्त लोग भी जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कई जगह पर गलत होता है। तो लाइफस्टाइल को समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए शरीर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पहला है कितने बजे हम सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। रात को 9 से 12 बजे तक जब हम सोते हैं तो हमको 1 घंटे के मुकाबले 2 घंटे का रेस्ट प्राप्त होता है, सब लोगों को पता है, लेकिन आप लोग कितने में सोते हो रात को? नॉलेज बुक में रह गया, नॉलेज ब्रेन के डीएनए आरएनए में रह गया, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आया। यही तो जो अभी कलयुग का सबसे बड़ा रोग जो है ना, यही है। पुराने जमाने में कहाँ पर 24 आवर्स इंडस्ट्री हुआ करती थी बताओ? लोगों का जीवन इतना स्वस्थ था, खेती करना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, बीमारियाँ कहाँ थी इतनी? अभी जॉब ही ऐसा हो गया है, कुछ लोगों का जॉब ही नाइट का ही होता है, ओनली नाइट, तो उनका पूरा सिस्टम ही पूरा बदल गया है। उनको नींद कभी आती है, जागते कभी है, हाजमा, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कितनी सारी तकलीफ उनको होती है। कुदरत के द्वारा जो आपको निर्देश दिया गया है कैसे आपको जीना है, उसके खिलाफ हम जीते हैं तो कुदरत भी जवाब दे देती है उसका, है ना। एनीवेज, तो 9 से 12 का नींद जो है, देखो मेरा काम यहाँ पर आपको नॉलेज देना है, उसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करना है वो आपके हाथ में, कि आपका आपका सिचुएशन लाइफ में अलग अलग होता है। किसी की 9 to 5 ड्यूटी है, किसी की 2 to 10 है, किसी का 9 PM to 7 AM है, हाँ। लेकिन शरीर को संभालना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा लंबा समय तक आप चल नहीं सकते इस तरह से चलते हुए, हाँ। 9 से 12 का नींद जो है वो 1 hour to 2 hour रेस्ट मिलता है, 12 to 3 में 1 to 1 नींद मिलता है शरीर को एक्चुअल लाभ, और उसके बाद में 1 hour to 1.5 hour लाभ होता है। इसलिए जो लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, खास करके उजाला होने के बाद, उनके उजाला होने बाद की जितनी नींद होती है वो उनको लगता होगा गहरी नींद है, लेकिन उसका लाभ उनको केवल आधा होता है, 50%। आप समय दे रहे हो, लाभ हाफ टाइम का ले रहे हो, बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर बॉम्बे में रहते हो 9 o'clock सोना मुमकिन नहीं आपके लिए, का पेशा ऐसा है, आप कॉल पे रहते हो और ड्यूटी पर रहते हो, अब होने को नहीं मिलता है, लेकिन जितना हो सके जल्दी सोने का प्रयास करो। कई लोग मैं देखता हूँ कि उनको मुमकिन है सोना, लेकिन आदतें ऐसी बना के रखिए ना, पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ मैगजीन पढ़ रहे हैं, या कुछ बातें कर रहे हैं बैठ के, या कुछ व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रहे हैं, दिन भर का मैसेज को आंसर दे रहे हैं, समय हो गया आपका, सो सकते हैं आप, लेकिन फिर भी सोने को कम इम्पोर्टेंस देकर बाकी लोगों को और चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिना मतलब के फ़ोन कॉल्स कम ले रहे हैं। अब मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने बहुत साल पहले मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दिया है इसलिए रोज बड़े गर्व से मैं 9:20 को सो जाता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए प्रैक्टिस छोड़ा नहीं है बाय द वे लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे पता है कि जीवन की बहुत सारी बीमारियाँ समय पर सोकर और जल्दी उठकर आप क्या कहते हो उसको, कैंसर अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ लाइफ की, खास करके वायरल डिसऑर्डर्स, वायरल फीवर्स, कफ एंड कोल्ड, हार्ट अटैक्स, कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर, जो केवल समय पर सोकर और शरीर को पूरा अच्छी तरह विश्राम देकर आप टाल सकते हो। इसलिए आप कितने भी बिजी हो, कितना भी प्रचार करते होंगे, कितना भी सेवा करते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन शरीर को अगर आपने समय पर विश्राम नहीं दिया तो शरीर जितना विश्राम उसको चाहिए था वो सारा होलसेल में बाद में आपसे ले लेगा। उसका मतलब क्या हुआ, आप जब बीमार पड़ोगे, एडमिट हो जाएंगे, तो आपको जितने आप काम इम्पोर्टेंट कर रहे थे वो सारे छोड़कर आपको बिस्तर पर सोना पड़ेगा 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो कितने घंटे हो गए आपके, 15 × 24 कितने घंटे हो गए, हाँ 360 घंटे हो गए आपके लाइफ के। वही अगर आप रोज एक एक घंटा, दो दो घंटा अगर टाइम पे सोते थे तो आपको फिर ये 15 दिन का होलसेल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। बॉडी जो है ना, बॉडी वो आप उसको समय पे दो या मत दो, वो अपना आराम बाद में ले लेगी आपसे। तो स्वस्थ रूप में बॉडी को नियमित रूप से आराम देना और बीमार पड़ के दवाई लेते हुए आराम देना, इसमें अंतर होता है। बट बॉडी विल टेक, आपके शरीर आपको मजबूर करेगा। आज आप किस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो शरीर के, तो कल आपको होलसेल में उसका टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, है ना। बच्चे का कफ कोल्ड आपने निगलेक्ट किया, फिर निमोनिया हो गया, फिर आपने छुट्टी लिया, बच्चे को छुट्टी दिलवाया और दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए 15 दिन के लिए निमोनिया टेस्ट करने के लिए। मैंने बोला था आप जल्दी दवा लो, एंटीबायोटिक लो, टेस्ट करो, निगलेक्ट किया, समय पर निगलेक्ट किया, बाद में उसका आपको जवाब देना ही पड़ेगा, हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। तो सबसे लिए, सबके लिए कलयुग का मालूम है ना सबसे बड़ा रोग क्या है, कि आगे के युगों में पेट भरने के लिए लोगों को 6-8 घंटे से अधिक काम नहीं करना पड़ता। अपना इंडिया का इकोनॉमिक्स ऐसा है कि केवल 4 महीने लोग मेहनत करते थे, 4 मंथ्स हार्ड वर्क और 8 मंथ्स ओनली भजन, ये इंडिया का टाइम टेबल है। क्योंकि साल भर का अनाज जो है वो 4 महीने के मेहनत से आपका भर जाएगा, तो उसके बाद क्या जरूरत है कंप्यूटर खरीदने की, लैपटॉप खरीदने की और मोबाइल खरीदने की। यू नी, यू हैव फूड, यू हैव गुड, ईट गुड वेजिटेबल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हाँ, बट शहर का लाइफ कैसा है, मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मेनी मेनी मोर थिंग्स देन फूड इज रिक्वायर्ड, यू वॉन्ट सो मेनी थिंग्स, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कलयुग का क्या लक्षण मैंने बताया आपको, कि जो 4, 5, 6, 7 घंटे में आपकी मेहनत पूरी होती थी आपके पेट के लिए, पालन के लिए, वो भी 12 घंटे और 15-14 घंटे में भी पूरी नहीं होती। 4-5 घंटे 8 घंटे काम करके पेट नहीं भरता आजकल। पहले केवल पति काम करते थे, पत्नी घर पे रहती थी, अभी पत्नी को भी जाना पड़ता है और दोनों मिलकर 10-10 घंटे 20 घंटा काम करते हैं, फिर भी परिवार का जरूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए लोगों पर स्ट्रेस होता है, हर चीज़ का लोन है, सबका परिणाम हेल्थ पर होता है। फिर आप थक जाते हो, हफ्ते भर में 12-12 घंटे बाहर रहते हो और शनिवार रविवार को घर पर रहते हो तो सोते रहते हो, परिवार के पास समय नहीं है, फिर क्या होता है, परिवार का स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। बिकॉज व्हेन यू गो टू वर्क, जब आप काम पे जाते हो तो बच्चे सोते रहते हैं, जब आप काम से आते हो तब भी बच्चे सोते रहते हैं, अब जब बच्चे जगे रहते हैं शनिवार रविवार को तो आप सोते रहते हो, तो आपको भी आराम की जरूरत है। जीवन ऐसा बना लिया है कि क्या करें उसके लिए, इसलिए कहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है, आपकी ज़रूरतों के विषय में या आपके हाथ में, और जितना आपका लाइफ सिंपल है ना उतना आप सुखी रह सकते हो, जितना आपका लाइफ हाई फाई होता है ना उतना आप दुखी होने की संभावना ज़्यादा है। अमीर आदमी कौन है, अमीर आदमी कौन है बताइए, जिसके पास बहुत पैसा है बहुत प्रॉपर्टी है वो अमीर आदमी नहीं है, जिसकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, जो कम कम सोर्स में उसका काम हो जाता है पूरा विथ मिनिमम फंड्स और रिसोर्सेस, हिज नीड्स आर फुलफिल्ड, ही इज़ अ रिच मैन, हुज नीड्स आर मिनिमल ही इज़ अ रिच मैन, नॉट दैट ही अर्न्स अ लॉट एंड हिज नीड्स आर अ लॉट ही इज़ नॉट अ रिच मैन, रियल रिच मैन इज हुज नीड्स आर मिनिमल, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। तो विश्राम के ऊपर मैं बहुत बोल सकता हूँ लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपने आप को विश्राम से वंचित नहीं रखना है आप। कभी कोई समय ऐसा आता है कि यू आर सो टायर्ड, बेटर यू टेक अ लीव एंड स्लीप एंड कवर योर स्लीप, क्योंकि स्लीप के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास किया है, अभी वो डिटेल में बात करने का समय नहीं, आपको समझेगा भी नहीं मेडिकली, लेकिन आपकी भाषा में समझाना है तो जब आपकी एक घंटा नींद कम होती है या दो घंटा नींद कम होती है या कभी कभी आपकी चार घंटा नींद कम होती है, आपको रात तक काम करना पड़ता है, उस दिन शरीर में जो द्रव्य निर्माण होते हैं उसकी वजह से उन द्रव्यों को निकालने के लिए आगे 10 आवर्स होने से भी वो द्रव्य निकलते नहीं शरीर से, एक घंटा समय के ऊपर न मिलने वाली नींद को कवर करने के लिए बाद में आपको 5 घंटा भी कम पड़ता है, कि नींद न होने से शरीर में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। नंबर वन, नींद नहीं होने से शरीर के अंदर जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है वो कम हो जाती है, इसलिए रोग की बढ़ोतरी होती है। जो विचारपूर्वक हर रोज़ या नियमित रूप से नींद लेता है उसको कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि कैंसर की पेशियाँ आप और हम सबके शरीर में पैदा रोज होती रहती है, लेकिन कुछ लोगों को कैंसर होता है कुछ को नहीं होता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि रात के समय पर जब आदमी विश्राम करता है तो शरीर के रोग प्रतिकारक सेल्स जो होते हैं ना वो कैंसर के सेल को पकड़ते हैं और नष्ट करके उसको किडनी से बाहर फेंक देते हैं। जब शरीर को समय पर विश्राम मिलता है तो वो विश्राम के समय पर क्या कहते हैं हम लोग, रिजुविनेशन, रिपेयर, वेयर एंड टेयर जो होता है ना उस समय होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, सर्दी हो गई है एक दिन रेस्ट ले लो, एंटीबायोटिक का जल्दी असर मिलेगा आपको। रेस्ट मिलने से क्या होता है, शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है। रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ ऑल मेडिसिन। तो रोज के स्तर पर आप सबके शरीर में टीबी के जर्म्स है, मेरे में भी है, आप में भी है, सबके शरीर में होते हैं। क्या हम लोग ट्रेन में जाते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, उधर घूमते हैं, कितने लोग मरीज हैं टीबी के मरीज। तो हर एक आदमी के शरीर में टीबी के जर्म्स होते हैं, कैंसर सेल्स भी होते हैं, लेकिन रोज रात को उसका खात्मा होते रहता है, इसलिए उस रोग का लक्षण हमको दिखाई नहीं पड़ता है, वो रोग का प्रकट्य जो है ना मतलब मैनिफेस्टेशन हमको दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति को नींद नहीं मिलती है, आप कैंसर के मरीजों को ज़्यादा डीप में जाकर हिस्ट्री पूछो, आपको मालूम पड़ेगा उसका लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल था, उसके जीवन में शारीरिक और मानसिक बहुत तनाव थे, बहुत डिमांड था उसके ऊपर, बहुत प्रेशर था उसके ऊपर, बहुत प्रेशर में उसने बहुत ज़िंदगी बिताई अपनी, और ख़ास करके उसको विश्राम समय पर नहीं मिला, ये आपको ध्यान में आए, इसलिए विश्राम करना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति था, उसका नाम मैं भूल गया अभी, वो भारत के कुछ पहले 10 बिजनेसमैन के अंदर था, बहुत मेहनती था वो, बहुत बुद्धिमान था, बहुत कम समय में उसने बहुत बड़ा बिजनेस का विस्तार किया था, और वो शरीर के लिए इतना सतर्क था कि कितना भी बिजी उसके करोड़ों का बिजनेस था फिर भी वो रोज़ जिम में जाता था, एवरी डे ही वॉज वेरी थिन, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसका शुगर, उसका बीपी सब कंट्रोल में था, और वो रोज जिम में जाके नियमित रूप से अंडर ट्रेनर अपनी कसरत करता था, फिर भी एट द एज ऑफ 42 एक दिन उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। सबको आश्चर्य हुआ, अरे और क्या करना चाहिए आदमी को, अगर कम उम्र में हार्ट अटैक से बचना है तो और क्या करना चाहिए आदमी को, इतना सब कर रहा था वो। बाद में मालूम पड़ा कि रोज़ वो केवल 5 घंटे सोया करता था, 5 घंटे, मतलब हम जब पढ़ते थे ना तो हमको बताया था कि 6 घंटा नींद की जरूरत है, आज जो पढ़ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि 7 घंटा जरूरत है। डू यू नो दिस, द न्यू गाइडलाइंस फॉर स्लीप इज 7 आवर्स पर डे, आइदर 6+1 और 7 अंडर स्ट्रेच, वॉट एवर यू कैन। तो वो आदमी रोज 2 घंटा कम सोता था। नीतू मान के हार्ट स्पेशलिस्ट नंबर 2 इन इंडिया, उसमें लोगों को गर्व होता है कि मैं 2 बजे तक ओपीडी करता हूँ। हाँ, ऐसे आज सर्जन्स हैं रात को 1 बजे तक ऑपरेट करते हैं, वो द नेक्स्ट मॉर्निंग 5 o'clock अगेन आई एम इन ओटी ऑपरेटिंग एंड दे फील्स वेरी ग्रेट। खाने को समय नहीं है, ब्रेकफास्ट करने को समय नहीं है, बीवी बच्चे तो दूर ही गए उनके, करोड़ों का प्रॉपर्टी जमा हो रही है, उसको कौन एंजॉय करेगा मालूम नहीं है। और ऐसे खट करके एक दिन ड्राइविंग कर रहे हैं, उधर ही शरीर छोड़ देते हैं। तो ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? दिस इज फुलिशनेस, नॉट इंटेलिजेंस। और जो व्यक्ति को पता है कि मनुष्य का शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी इतना घंटा काम नहीं करेगा। जिसको पता है कि लाइफ का गोल क्या है, वो कभी भी 20 घंटा काम नहीं करेगा। ही विल पुट ड्रॉ लाइन समवेयर कि बस इतना काफ़ी है, इसके आगे का समय मेरे को भगवान के लिए देना है। जिसके जीवन में भगवान का कोई अधिष्ठान नहीं है वही ऐसे काम कर सकता है पागलों की तरह। तो गधे मेहनत करते ना, गधा मजदूरी कहते हैं। कोई गोल लाइफ का नहीं है ना, उसके लिए करना क्या है? रिटायर तो हो गया है लेकिन मालूम नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर भी रिटायर के बाद में भी जाते रहते हैं ऑफिस में, इधर कंसल्टिंग, किधर किधर प्राइवेट में, किधर सेवा बोल के, नो एंगेजमेंट ना। हमको बोलो आज रिटायर होने का है तो आज रिटायर हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है कितना काम करना बाकी है स्पिरिचुअल लाइफ में, कितना किताब पढ़ना बाकी है और कितना साधना करना बाकी है और कितना विकारों पर विजय पाना बाकी है, भगवान बहुत दूर है, ये सब पता है। इसलिए आज भी जरूरत तो होंगे और अगले 30 साल भी जियेंगे तो 30 साल के लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट इन थियोरी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे भाई है वो 57 का हो गया है, उसको पता है कि नेक्स्ट ईयर इज हिज रिटायरमेंट ईयर, तो अभी से वो टेंशन में है, पता नहीं क्या करूँगा। क्योंकि इतने कीमती जीवन का 57 साल तक जीने के बाद भी जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है पता नहीं है ना। तो पैसा ही है सब कुछ, अभी वो पैसे हर महीने आते थे उसकी आदत टूट जाएगी, अभी नेक्स्ट मंथ से पगार नहीं आएगा, जो पूंजी जमा किया है उस पर ही अभी आगे का चलाना पड़ेगा, उसको ही घुमा फिराना पड़ेगा, उसका टेंशन है। फिर 8 घंटे बिताना कैसे, घर बोले भी बोले कि अरे जब तक आप काम पे थे तो घर में शांति थी, अभी आप बोलेंगे सब्जी ऐसे क्यों बनाई, ये क्यों नहीं किया, वहाँ झाड़ू क्यों लगाया नहीं, इतना उधर कॉब वेब्स क्यों है, और वो टीवी ऑन ही क्यों रखा, उसको बंद क्यों नहीं किया, वो पंखा चालू रखा वो बंद क्यों नहीं किया। हाँ, वो अपना तेंदुलकर जब निवृत्त हो गया ना तो कई जोक्स व्हाट्सएप पे आते थे कि अंजलि तेंदुलकर बहुत परेशान हो गई अभी, पहले जाता था खेलने के लिए तब तक हम घर में शांति थी, अभी हर सब्जी को ताने देता है, क्यों? क्योंकि लाइफ इट्स अ जोक अल्टीमेटली। बट पॉइंट इज दैट रिटायरमेंट के बाद लोगों को फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या उनको पता नहीं है। और भक्त लोग रिटायर होने के लिए आतुर रहते हैं, उनको मालूम है कि जो इतने दिन नहीं कर पाए भगवान के विषय में अभी कर पाएंगे अच्छी तरह से, यही अंतर है। तो नहीं, मैं कैंसर के पेशेंट की बात कर रहा था, आप डीप में जाके देखेंगे तो पता चलेगा, एक है नंबर 1 स्ट्रेस और दूसरा है लैक ऑफ स्लीप एंड लॉट ऑफ टेंशंस, और एक हो गया नींद, विश्राम। और विश्राम का भी बहुत तरीके होते हैं, आप बिस्तर पे 10 घंटा रहेंगे लेकिन 1 घंटा भी नहीं सोए रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है, पता है कि नहीं? मन में विचार चल रहे हैं, सपने आ रहे हैं, बार बार जग रहे हैं, या खर्राटे भर रहे हैं, या तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई कुत्ता भूख रहा है, तो बिस्तर पे आपने बहुत घंटे बिताए लेकिन नींद नहीं मिला, तो उसके लिए व्यवस्था करना जरूरी है बहुत। और आजकल का जीवन देखो कैसा है, बॉम्बे नेवर स्लीप्स इट सीम्स, बॉम्बे इज ऑलवेज अवेक। अभी गणपति आएंगे, अभी नवरात्रि आएंगी, तो दोज़ हू वांट टू स्लीप दे कांट स्लीप ऑल्सो, ऐसा हो जाएगा। हमने प्लानिंग करके रखा है 11 दिन कहाँ रहना है, यहाँ पर नहीं रहना है, हाँ ये तो इधर रहेंगे या तो कहीं और जाके रहेंगे, कुछ रात को सोने को नहीं मिलेगा, और 11 डेज की पेंडिंग स्लिप कब पूरा करेंगे, इतना काम रहता है। दूसरा बात है आहार, दोपहर को जो सोने का है वो केवल 20 मिनट का नींद आरोग्य का लिए बताया गया है, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, नॉट 2 आवर्स। वाम कुक्षी म्हणजे डाव्या बाजूला झोपणे जेवल्यावर अर्धा तास 20 मिनट, लेकिन गहरी नींद घंटा घंटा सोना या आरोग्य के लिए हानिकारक बताया, उससे कफ बढ़ता है, मतलब कफ मतलब वो बलगम नहीं, आयुर्वेदिक विकार जो है ना, कफ विकार बढ़ जाता है, तो उससे फैट बढ़ता है, उससे बदहजमी होती है, उसमें बहुत पेट के विकार निर्माण होते हैं, इसलिए आफ्टरनून का सोना झपकी ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं, लेकिन स्लीप लेना अलाउड नहीं है। और स्मॉल किड्स, स्मॉल किड्स आर स्मॉल किड्स, मैं एडल्ट्स की बात, स्मॉल किड्स तो जब जन्म लेता है तो वो 22 घंटे होता है, वो तो उसके अलावा उसका बाल बाल का बाल का जो काल है ना, बाल्यकाल, वो कफ प्रधान बताया गया है। टिल यू बिकम यंग एंड सेक्सुअली एक्टिव, तब तक आपका काल जो है वो कफ प्रधान बताया गया है। जब आप जवान होते हो तो वो काल पित्त प्रधान बताया गया है, और जब आप बुढ़े होते हो तो वो वात प्रधान बताया गया है। तो कफ काल में जब बालक सोता है तो उसका हेल्थ बढ़ता है, एक बार कफ काल समाप्त हो गया और आप सोने लगे तो आपका हेल्थ बिगड़ जाता है, योर हेल्थ गेट्स स्पॉइल्ड। और वात का मतलब क्या होता है, जोड़ों में दर्द, हाँ, शक्ति में कमी हो गई, और बहुत सारे विकार वात के हैं, दर्द सबसे बड़ा विकार वात का है, पेन इज बिकॉज ऑफ वात। सो दोपहर में कम सोना चाहिए, और हेल्थ को अगर आपको ठीक से रखना है तो बुढ़ापे के समय पर नींद को क्या कहते हैं उसको डिप्राइव करना बहुत खतरनाक है, और चना राजमा और हैवी ग्रेन्स खाना 35-40 के बाद में ज़्यादा खाना तो बुढ़ापे को बहुत जल्दी जल्दी बुलाने जैसा है। इसलिए वो होता है ना सब्जियाँ पानीदार, मतलब दूधी तुरई काशी फल यानी कि ढोपला तोंडली भिंडी, ये सब ज़्यादा खाएंगे तो बुढ़ापा दूर रहता है। और रोज कसरत करना ये भी वात को दूर रखता है, रोजा व्यायाम, हफ्ते में 2 बार एक बार मसाज, ये एक्टिविटीज जो है वो वात को दूर रखती है, वात को दूर रखने से बुढ़ापा भी देर से आता है। और इसलिए गौमूत्र घनवटी काऊ घी ये सब वात को दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे महाप्रभु जी है ना मिस्टर महेश्वरी, 78 के हो गए अभी भी अट्टे कट्टे हैं, अभी भी 2 घंटा प्रवचन करते हैं, अभी इतना जोश है उनके अंदर, क्योंकि बचपन से उन्होंने गाय का घी का भोजन खाया है। जो बचपन से गाय का घी का सेवन करता है उसका आयु लंबा होता है, उसको बुढ़ापा देर से आता है, और देर तक उसके शरीर में शक्ति बनी रहती है, क्योंकि गाय का घी जो है एक तो वात विकार दूर करता है और सारे रोगों दोषों का संतुलन करता है, और शरीर को शक्ति प्राप्त करता है। वो शीतवीर्य है, मतलब वो शरीर को एजिटेट नहीं करता है। तेल जो है वो उष्णवीर्य है, मतलब तेल को सेवन करने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, बहुत सारा विकार पैदा होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन काऊ घी शीतवीर्य होने की वजह से शरीर को संतुलन देता है और दिमाग को भी शांति देता है। फैट सब में है, फैट इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन इसका स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है। बचपन में ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिडिल एज और उम्र हो गई 2 स्पून्स काऊ घी आप ले सकते हैं दूध के साथ, या भोजन के ऊपर, दाल के ऊपर, चावल के ऊपर, रोटी के ऊपर। ऐसा कहा गया कि रोटी के ऊपर 1 बूंद क्यों ना हो घी लगाना ही चाहिए, सूखी रोटी नहीं खाना चाहिए, वो तो नुकसान करती है। काऊ घी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ काऊ घी? बाजार में जो मिलता है 200 रुपया किलो, वो काऊ घी नहीं होता है, केवल धूल पेक होती है आग के अंदर, आई वॉश। काऊ घी का मतलब क्या है, देसी गाय होनी चाहिए, कम से कम काऊ तो होनी चाहिए, देसी नहीं होती, जर्सी हो या कोई भी हो, लेकिन वो काऊ होनी चाहिए नंबर वन, वो चलती फिरती काऊ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो एक कोटे में बैठी है, इसको चलने के लिए जगह ही नहीं, किधर शहर में रस्ते हैं, गटर का जगह है, किधर घूमेगी वो, घास ही नहीं, कहीं घूमने की जगह ही नहीं है, तो वो एक ही जगह पड़ी रहती है, उधर ही आगे पीछे करती है। लेकिन काऊ के हेल्थ के लिए गौचारण यानी कि उसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको चलाने पर उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसका दुग्ध में क्वालिटी अच्छी आती है और प्रमाण भी बढ़ता है उसका, नंबर 2। नंबर 3 उसका ज़बरदस्ती दूध नहीं निकलना चाहिए, जब उसका दिल है, जब वो खुशी में है और प्रेम से आपका रिश्ता है उसके साथ में, तब वो जितना दे रही है उतना ही निकलना चाहिए। आजकल क्या करते हैं, उसका दूध ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसको इंजेक्शन लगाते हैं, ऑक्सीटोसिन, स्टीरोइड्स, हार्मोन्स, हाँ बहुत सारे दवाई लेते हैं उसको दूध उसका कृत्रिम से बढ़ाने के लिए। उससे गाय के शरीर का बहुत नुकसान होता है, बहुत मतलब आपको मैं वर्णन नहीं कर सकता कितना नुकसान होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद में रोज गाय को दूध निकालते समय बच्चा पैदा करने वाली वेदना होती है, डिलीवरी पेन्स, एवरी सिंगल डे द काउ सफर्स फ्रॉम प्रसूति वेदना जब उसको इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, क्योंकि वही हार्मोन बच्चा पैदा करने के लिए गर्भाशय को आकुंचन करता है और वही हार्मोन दूध निकालने के लिए भी सहायता करता है माता को। जन्म देते समय वो हार्मोन गर्भाशय को संकुचित करता है और बच्चे को डिलीवरी के लिए मदद करता है, और वो होने के बाद में वही हार्मोन स्तन में दूध को बढ़ाता है, उसी हार्मोन का इंजेक्शन लोग गाय को लगाते हैं। क्रूरता है सबसे बड़ी, इट्स वेरी बिग क्रूएल्टी। अच्छा, उसके बाद में जब दूध निकालेंगे तो बछड़े को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि बछड़े को देख के ही उसका दूध बहने लगता है, और बच्चे को एटलीस्ट रिजनेबल दूध देने के बाद में ही हमारा दूध लेना चाहिए। ये लोग क्या करते मालूम है क्या, बच्चे को दूर से गाय को दिखाते हैं, वो देख के उसके वात्सल्य से दूध आने लगता है तो बच्चे को बाजू में करते हैं उधर उधर दूध निकालते हैं, ये भी क्रूरता है। एनीवेज वो विषय अलग है बहुत। उसके बाद दूध निकालने के बाद में उसको गर्म करते हैं, उसकी क्रीम को अलग निकालते हैं, और एक दो बार गर्म करके क्रीम निकाल सकते हैं, फिर आपको दही जमाना है उसका, रात भर दही जमाएंगे तो नेक्स्ट डे उसको हाथ से मंथन करना चाहिए, मशीन से मंथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन का मंथन एक दिशा में होता है, दो दिशा में नहीं होता है। हाथ से करेंगे तो ऐसे करेंगे तो एक दिशा में, ऐसे करेंगे दूसरी दिशा में तो होता है घर्षण, वो घर्षण से दूध के अंदर जो मक्खन पैदा होता है उसके अंदर बहुत दिव्य शक्ति पैदा होती है। अभी उसका एक साइंस है पूरा, आपको समझ में नहीं आएगा वो, सफाइस टू से नाउ आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो दूध के अंदर और घी के अंदर शक्ति आपको मिलनी चाहिए वो हाथ से मंथन करने से उसमें प्राप्त होती है, इतना आप समझ लो। अब इसका डिटेल आएगा तो दो घंटा लगेगा समझाने के लिए कि कैसा होता है वो, क्या घर्षण क्या होता है उसके अंदर। एनीवेज हाथ से दो दिशा में लगातार घर्षण करने से उसका मक्खन ऊपर आता है, और उसको जब आप गर्म करते हो तो फिर घी बनता है, उसी घी को शास्त्रोक्त और सही घी कहा गया है। और जो मार्केट में आपको मिलता है वो क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं क्रीम निकाल लेते हैं, ठंडा करते हैं क्रीम निकाल लेते हैं, गर्म करते हैं ठंडा करते हैं फिर क्रीम निकालते हैं, दो तीन बार गर्म करते हैं ठंडा करते हैं क्रीम निकालते हैं, और डायरेक्टली उस क्रीम को गर्म करते हैं, उसका भी एक प्रकार का घी बनता है, लेकिन घी के कोई गुणधर्म उसके अंदर नहीं रहते, पीला रंग का रहेगा वो, सब कुछ रहेगा, टेस्ट भी घी जैसा रहेगा, दिखेगा भी घी जैसा, लेकिन वो घी नहीं रहता है, इसलिए वो 200, 300, 350 में अवेलेबल रहता है। दूसरे लोग कोई दही जमाते हैं और मंथन करते हैं तो एक दिशा में मंथन करते हैं मशीन से, आदमी अवेलेबल नहीं है तो मशीन डाल देते हैं उसके अंदर, वो भैया कैसे रहता है लस्सी पिलाएगा तो क्या करता है वो, हाथ से नहीं करता है, ट्र करके आपको दे देते हैं, उसमें आपको मट्ठा दही लस्सी का लाभ नहीं मिलता है, वो भी कृत्रिम है। ऐसे कहा गया है कि जब हम मंथन करते हैं तो भगवान का नाम का जप करना, भगवान के गीत गाने, प्रेम और भक्ति भाव से गाय और भगवान की याद करते हुए धन्यवाद की भावना में आपको शांत चित्त से उसका मंथन करना है, तब जाके पूरा लाभ मिलेगा आपको। वो तो बहुत आगे की बात है, भक्ति और प्रेम और गीत गाना तो यशोदा मैया की बात है, थोड़ी हमारा बात है। हमारा तो बिजनेस कितना है, कितना लीटर का दूध निकल रहा है, कितना रुपया मिल रहा है, कितना खाना खिलाया गाय को, उसका इकोनॉमिक जमता है कि नहीं, ये भावना रहती है मन में हमारे। तो अगला बेस्ट है, अगला बेटर घी है जो एक एक दिशा में घुमाने वाला मिलता है, लेकिन जो बेस्ट घी है वो ये इस प्रकार का है जो मैंने आपको बताया, और उसकी कीमत 2000 से कम नहीं होती। इसलिए बाजार में आपको कोई बोलेगा शुद्ध गाय का है, यहाँ का है, वहाँ का है, वो चीटिंग है सब। रियल घी है, अगर आपको रियल घी चाहिए तो 1500 से आगे ही मिलेगा आपको, और बाकी सारे घी जो होते हैं वो इंजेक्शन मारे हुए, वो गाय कचरा खाती है रास्ते पर, उसको घूमने के लिए जगह नहीं होती है, वो घास नहीं खाती है, हाँ इस तरह से सारे वस्तुओं को ग्रहण हम करते हैं। तो अभी हम कहेंगे आप दूध कहाँ से पीते हो, हमारा दूध जो है वो पतमेड़ा से आता है, राजस्थान की गौशाला से आता है, हमारे मंदिर के भक्त लोगों ने वहां जाकर रिसर्च किया पूरा। और सच्चा घी कौन सा है एक बताना भूल गए मैं। लोग क्या करते हैं, जब तक गाय दूध देती है और आपका इकोनॉमिक्स बराबर हो रहा है, आप कितना पाउडर खिला रहे हो, कितना देखभाल कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो और कितना लीटर दूध निकल रहा है और वो मैच हो रहा है, तब तक रखते हो उसको। 2 लीटर भी दूध कम दिया उसने तो उसका लॉस में जाता है, दूध बंद नहीं हुआ अब तक गाय का, अभी तक वो वांझ नहीं हुई है, अभी तक उसका काम बंद नहीं हुआ है, अब दूध दे रही है वो, लेकिन कम भी होने के बाद में तुरंत उसको बेच देते हैं काटने के लिए, कत्तल खाने में कटवाने के लिए बेच देते हैं उसको। तो ऐसे गाय का पहले भी दूध पीने से वो पाप हमको भी लगता है। आपको लगता होगा हम तो खरीद रहे हैं पैसा देकर, हम क्या पाप कर रहे हैं, लेकिन वो जो पाप कर रहा है उसका लाभ आपको भी मिलेगा। इट्स वेरी डेंजरस थिंग, आई लर्न्ड ऑफ लेट ओनली। हम सोचते हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, हम तो खरीदते हैं, लेकिन उस गाय का दूध पीना पाप से मुक्त होता है जो गाय को दूध बंद होने पर मारा नहीं जाता है। तो मैं वाड़ा में गया था अभी और मैं चौकसी कर रहा था वहाँ पर कैसा है, तो बोलेंगे हमारा एक्चुअल दूध का जो खर्चा है वो 300 रुपया लीटर है। तो अगर वो सारा खर्चा अगर आप गिनेंगे ना कि गाय अभी दूध नहीं दे रही है, उसको भी पालन करना है, उसको भी भोजन खिलाना है, उसको रखना है और प्राकृतिक मौत तक उसकी सेवा करनी है, और 100 गाय हमारे पास और अभी केवल 10 गाय दूध दे रही है या 50 गाय 25 गाय दूध दे रही है, बाकी 75 बैल है कुछ है उसमें, कुछ बछड़े बैल हैं और कुछ बीमार गाय हैं, कुछ बुढ़ी गाय हैं, ये सब की सेवा करने, किसी को मारना नहीं है। तो एवरेज आप जब 1 लीटर दूध निकालते हैं उस गौशाला से, उसकी कॉस्ट 300 से 400 रुपया किलो होती है, लीटर होती है। इसलिए आज भी हमारे वाड़ा के मंदिर आश्रम में घी जो है वो 2000 किलो रुपये में बेचते हैं, और मैं वहाँ से लेके आता हूँ हमेशा। मैंने कहा 4 चमचे घी खाने के बदले में 1 ही चम्मच खाऊँगा, लेकिन वो खाऊँगा जो पाप रहित भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है और सही घी है, वही खाना चाहिए। क्योंकि वो घी पर खर्च करने से आप आगे डॉक्टर को जो खर्च करने वाले हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो आपको डॉक्टर को देना है, क्योंकि आपका शरीर आपसे डिमांड करेगा ही, या तो हेल्दी खाना दो या दवाई दो, दोनों में से एक दो। आइदर स्पेंड ऑन हेल्दी आइटम्स और स्पेंड ऑन मेडिसिन, डिफरेंट, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। घी आप ऐसा बनाया होगी खाएंगे ना तो एक भी कण से कैल्शियम नहीं बढ़ेगा। आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के अंदर जिनको हृदय का विकार होता है उनको 5-5 किलो घी खिलाते हैं 6 हफ्ते के अंदर, कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो ये एक मिसनोमर है, क्योंकि बाजार में जो घी मिलता है वो सारे घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली बनाया ही नहीं गया, जिसको घी कहते हैं वो आपको मिल ही नहीं रहा है, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वो घी खाएंगे तो आप 2 की जगह 4 और 6 खाएंगे ना चम्मच, तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, बढ़ाने का नहीं गुण नहीं उसके, वो ट्रीटमेंट है कोलेस्ट्रॉल का। 1200 रुपये का घी है कल्याणी, वो घी जो है ना उसमें सब कुछ किया है, खाली मंथन जो है ना वो मशीन से किया है कल्याणी का, वो 2000 का घी रखने को तैयार है यहाँ पर, अगर कस्टमर होंगे तो मंगाएंगे वो, पर कम से कम वो दही जमा कर मक्खन निकाल कर गर्म करके बनाया गया है, बेटर है ना बाहर के 200 रुपये के घी से। उनके पास क्रीम का घी भी अवेलेबल है 400 रुपये का, पतमेड़ा का घी अवेलेबल है, वो बोलते हैं कि ये घी क्रीम से बनाया गया है। क्रीम का देखो जो प्रक्रिया भगवान ने दी है, क्रीम को आपको बाद में दही में डालना है, जब आप मंथन करेंगे ना तो वो क्रीम को डालना है उसके अंदर, तो उस समय जब आप मंथन करेंगे तो उस क्रीम का मक्खन में रूपांतर होता है। मैंने बचपन में भगवान की दया से 25 साल तक हमारे घर में मंथन किया है, 5 साल की उम्र से 25 साल तक किया, एवरी डे माई सेवा, हर रोज सुबह मम्मी रात को लगाती थी मंथन वो दही, सुबह वो मांडनी होती है, मांडनी मतलब लकड़ी वाली, उसको डोरी लगा के मैं उसको करता था, और रोज सवेरे हम लोग फ्रेश मक्खन को खाते थे किसी अलग अलग चीज़ के साथ, और बचा हुआ फिर उसका घी बनता था रोज, एवरी सिंगल डे फ्रेश बटर एंड फ्रेश घी, हर 3 दिन में घी बनता था घर में, बचा हुआ मक्खन था। दिस इज नेचुरल लाइफ, वो सब हमारा चला गया अभी लाइफ, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। इसलिए आप लोगों को सोचना है कि अगर आपको हेल्थ को मेंटेन करना है तो आपको दूध वही पीना है जो योग्य दूध हो। बाजार में मिला हुआ कोई भी दूध योग्य नहीं होता है, सब गाय भैंस बकरी सबका मिक्स मिलता है, पानी वानी डाल के, यूरिया डाल के, केमिकल डाल के, शैम्पू डालते हैं उसके अंदर, डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, डिटर्जेंट, फेविकॉल सब डालते हैं उसके अंदर। मेरे पास एक पूरा स्लाइड शो है, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू, अहिंसा मिल्क करके मेरे पास एक स्लाइड शो है, तो मैं नेक्स्ट टाइम मुझे याद करना, मैं लेके आता हूँ आपको दिखाता हूँ। हम लोगों को नॉलेज नहीं है कि नॉर्मल चीज़ क्या है, हमको पता ही नहीं। हम लोग जो पैकेट होता है, चूँकि एडवर्टाइज बड़ी बड़ी होती है अमूल की, और तो बहुत पैसा खर्च करते हैं ऐड के ऊपर, वहाँ पर हम लोग खरीदते हैं उस चीज़ को। हाँ, अमूल बटर क्या है? इट्स ओनली बटर ऑयल, इट्स अ फैट ऑयल, देयर इज नो बटर इन दैट। बटर होता ही नहीं उसके अंदर, उसको खाली प्रोसेस करके, सीजन करके उसको स्प्रेडेबल बनाया है, स्प्रेडेबल आइटम बनाया है, तो बटर है ही नहीं, इट्स ओनली फैट। बटर मतलब क्या? जो आप दही का मंथन करके जो निकालते हो ना, उसको बटर कहते हैं। हर चीज़ बटर नहीं होती, जो दिखती बटर जैसी, सागर बटर, अमूल बटर, बटर नहीं होता है। इसलिए एक होता है ऑर्गेनिक मिल्क और ऑर्गेनिक घी, मतलब वो गाय जो है ना वो वही चारा खाती है जो किधर कीटकनाशक और केमिकल नहीं मारा है उसके ऊपर। वो गाय भी केमिकल मारा हुआ घास ही खाती है, तो सारा कीटकनाशक उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके दूध में भी प्रवेश करता है, बटर में प्रवेश करता है, घी में प्रवेश करता है। हा? तो एक है नॉन ऑर्गेनिक मिल्क, मतलब आपकी गाय मेरा रोड रास्ते पर घूमती है और गटर में कचरे के डब्बा में जो खाती है, प्लास्टिक भी खाती है, सब कुछ खाती है पेट भरने के लिए, मालिक कुछ नहीं खिलाता उसे, और दूध निकालता है बस, वो एक मिल्क है। वो मालिक भी जैसे दूध बंद होता है तो उसको बेचता है काटने के लिए। दूसरा है ऑर्गेनिक मिल्क, मतलब गाय जंगल में रहती है कहीं, उसकी गौशाला कहीं गांव में है, उसको गायरान भी है, क्या बोलते हैं उसको, गोचर जमीन, गांव में जमीन होती थी पुराने जमाने में, अभी सब लोग ने कैप्चर करके बिल्डिंग बनाया उसके ऊपर, तो गाय की जो होती है ना जमीन चारा खाने के लिए, वो सब भूमि नष्ट हो गई है अभी, गोचर भूमि। तो वो गांव में चलती है, जैसे मरवाड़ा में इतनी हरियाली है, कहीं भी चराओ गाय को, वो जड़ी बूटी खाएगी, फर्स्ट क्लास हरियाली खाएगी, पत्ते खाएगी, फर्स्ट क्लास सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम पत्ते खाएगी, वो बहुत प्रेम से घूम घूम के पेट भर के आएगी, फिर उसको नहलाया जाएगा, उसको फिर दूध निकाला जाएगा सुबह शाम, बहुत दूध देगी वो, ऑर्गेनिक दूध कहते हैं उसको, मतलब गाय भी ऑर्गेनिक खाती है और उसका दूध को प्रेम से उसको रखा गया है और दूध देती है। अब ये ऑर्गेनिक दूध जो है वो अहिंसा दूध नहीं है, क्योंकि तो अगर उसको गांव में रखने के बाद में अगर दूध देना बंद कर दिया तो उसको भेज देते ना कत्तर खाने में, तो वो हिंसा मिल्क है, हिंसा ऑर्गेनिक मिल्क। अहिंसा मिल्क वो है, उसके आगे का कंसेप्ट है वो, कि जिस गौशाला में गाय को मारा नहीं जाता है दूध बंद करने के बाद, वो दूध जो है वो अहिंसा मिल्क है। कितने गौशाला में ऑर्गेनिक रूप से गाय को रखते हैं, लेकिन जैसे ही बछड़ा होता है तो जन्म होते ही उसको काटने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि बैल के लिए कुछ काम ही नहीं ना, ट्रैक्टर आ गए हैं, बैल को करना क्या है, बैल इज अ बर्डन। और बैल जब न्यू बॉर्न तो न्यू बॉर्न बैल के सॉफ्ट फ्लैश के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए ये बोलते हैं कि माँ को उसको लगाओ भी मत दूध पिलाने के लिए, तुरंत उसको भेज दो, ऐसा बोलते हैं, हाइएस्ट प्राइस अवेलेबल। अगर ये हमारा मेंटेलिटी होगा तो कहाँ से हमको पुण्य मिलेगा और कहाँ से हमारे बाप नष्ट हो जाएंगे बताओ। तो आदमी के लिए कन्या का गर्भपात करते हैं और गाय के लिए बैल होते ही उसको भेज देते हैं काटने के लिए, कैसा इंसान है देखो, स्वार्थ जब जीवन का नींव बन जाता है, स्वार्थ इज द ओनली पर्पज ऑफ लाइफ, हाँ हरे कृष्णा, व्हेन सेल्फिशनेस इज द ओनली गोल ऑफ लाइफ, व्हेन ऑल दिस एक्टिविटीज कीप हैपनिंग इन लाइफ। और वो सारे जितने भी चल रहे काम वो सबके भागीदार हम सब लोग भी हैं, याद रखना। यू कांट से आई डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेम वर्ल्ड, तो आपका जो भी लोग करते हैं और जिसका फल के रूप में आप खरीदते हो, कुछ सामान खरीदते हो, सब चीज का लाभ नुकसान आपको होते रहता है। जो कीटनाशक वहां पर गांव में लगाया जा रहा है तुम्हारे फसल के ऊपर, वो आपके पेट में भी आ रहा है। वो जमीन के अंदर बारिश होकर जब जाता है और जमीन के अंदर नदी नाले और बाद में नदी में आके मिल जाता है, वो नदी का जल जब हमारे घर पे आता है तो आपको भी वो कीटनाशक खाना पड़ता है। जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो उसी नदी और नाले से पानी लेकर कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी आप कंसेप्ट आया है परमिसिबल लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, परमिसिबल लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ऐसा कभी होता है लेकिन आया है। कोला में, पेप्सी में जो ड्रिंक्स है उसके अंदर सब में कीटनाशक का एक लेवल होता है। बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर कितना बड़ा हल्ला हुआ था उसका, यदि एक पेप्सी कोला और कोका कोला की कंपनी ने करोड़ों रुपए दबाकर उसको मिटाया और वो अभी भी चालू है और 15 साल हो गए मैं तब से ये कोला और कोल्ड ड्रिंक पीना मैं बंद कर दिया है, क्योंकि हर कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक। स्प्राइट सब में होता है, एवरी कोल्ड ड्रिंक हैज इंसेक्टिसाइड्स इन दैट, एवरी कोल्ड ड्रिंक। इसलिए कहा गया ना, पदम पदम यत विपदम नतेषाम, कलयुग में हर कदम पे पाप है। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, कपड़ा पहनने में, हर चीज में पाप है। अगर आप वस्त्र पहनते हो, गर्म गर्म कपड़े का वुलन का वस्त्र पहनते हो और जो वुल का कपड़ा आपने पहना है वो जिस बकरी से आया है, जिस मेंढी से आया है, उसका अगर वध किया जाता है तो उसका पाप भी हमको लगता है वो वस्त्र पहनने से। आपने लेदर की बैग पहनी होगी किसके पास, लेदर का पट्टा होगा आपके पास, लेदर की कैरी बैग होगी, लेदर का पर्स होगा आपके पास, लेदर का पॉकेट हो, क्या बोलते हैं उसको, पर्स वॉलेट होगा आपके पास। वो अगर किसी गाय को मारकर उस चमड़ी से बनाया होगा तो उसका पाप आपको भी लगेगा। हम क्या सोच रहे हैं, हमने तो बड़े फेमस मॉल में जाकर उन्होंने ब्रांडेड वॉलेट खरीदा है, आपको कितना गर्व लगेगा, सबको दिखाएंगे आप, किसको गिफ्ट देंगे बर्थडे को, प्रेशियस गिफ्ट वी आर गिवन, बट अ बिग चंक ऑफ सिंस आर ऑल्सो गिफ्टेड अलॉन्ग विद दैट, प्लीज माई बर्थडे गिफ्ट टू यू। इसलिए शुद्ध जीवन जीना जो है ना बहुत ही जरूरी है, वो हेल्थ के लिए भी आवश्यक। अपने हेल्थ का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन ये बहुत सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम शाकाहारी हैं, हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम सोच रहे हैं कि हम प्रसाद खाते हैं, लेकिन वो दूध जो पीते हैं वो हम पापी पीते हैं अगर हम लोग नहीं जानते तो। कोई नॉनवेज नहीं खा रहे हैं फिर भी उसके पीछे कितना सूक्ष्म पाप छुपा हुआ है और वो आपको एंटेंगल कर रहे हैं। इसलिए अभी हमने एक निर्णय लिया है कि अगर हमें पता नहीं है कि हमारा दूध कहाँ से आ रहा है तो हम दूध ही नहीं पिएंगे। मुझे बाहर गाँव कहीं गए, अगर पता है उनके घर में दूध हमारे तरफ से जो हमारा नॉलेज है उसके हिसाब से आ रहा है तो ही हम पिएंगे, नहीं तो हम कहेंगे दूध हम नहीं पीते, हमारा शुगर बढ़ गया है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा ये हेल्थ अच्छा नहीं है, दूध मना कर दिया, हम दूध नहीं पीते। ऐसा बता के दूध नहीं पीते। फॉरेन कंट्रीज में दूध पीना अभी छोड़ दिया है हमने, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में दूध नाम की चीज़ ही नहीं होती, जो भी होता है केवल हत्या होती है और पाप होता है, और क्या बताएं उसके बारे में। तो मैंने भी सोच लिया कि फॉरेन में जाऊंगा कभी तो पतमेड़ा का मिल्क पाउडर लेके जाऊंगा, उतना गिन के उतना वेट एडजस्ट करके उतना ले जाऊंगा और रोज उसका दूध पीऊंगा, और कभी दही भी जमा सकते हैं उसका, आइसक्रीम बना सकते हैं उसका, सब कुछ कर सकते हैं उसका, क्योंकि फॉरेन में दूध नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए फॉरेन में सबसे अधिक दूध की एलर्जीज पाई गई है, देखो आप मैक्सिमम मिल्क एलर्जीज आर इन फॉरेन कंट्री। तो गाय का इतना अपराध किया हुआ है, इतना अपराध किया है तो क्या होगा, आप गाय के दूध को भक्षण करने के लिए आप योग्य नहीं रहे इसके आगे, इतना पाप कर दिया आपने, तो फिर गाय का दूध की एलर्जी, मक्खन की एलर्जी, घी की एलर्जी हो जाएगी आप, ये सब अपराध का फल है। इसलिए शुद्ध जीवन जीने के लिए नॉलेज भी होना जरूरी है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जो चीज़ आपको शुद्ध दिखता है, जिसका एडवर्टाइज में शुद्धता बताई गई है, वो शुद्ध होगा इसकी गारंटी नहीं होती है, स्टडी करना जरूरी है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक खाना खाए। हमारे नेचर्स गिफ्ट शॉप में हम लोग वाड़ा में जो पकाते हैं और बाहर से जो हमने पूरा जांच कर दिया, उसका पूरा स्टडी कर दिया है, तो रियली ऑर्गेनिक है, इसमें कोई कीटनाशक नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है, वैसा ही हमने यहाँ पर रखते हैं, स्पिरिचुअली एंड मटेरियली फुल प्रूफ। थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है लेकिन हम लोग उसी को लेते हैं आजकल, थोड़ा सा बोले ना वो जीवा का जो है ना लांगुल चालन थोड़ा कम करते हैं, हर चीज़ जो जीवा को अच्छी लगती है वो नहीं खाते हैं, जो शहर के लिए शरीर के लिए अच्छी लगती है उसी को खाते हैं। तो तेल है उधर, ग्रेन्स है उसमें, सीरियल्स हैं, पल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, तो सारी चीज़ें जो उस प्रकार से बनाई गई हैं उसी को लेते हैं। बाहर कुछ नहीं खाते, एक भी आइटम बाहर का नहीं खाते, क्योंकि बाहर का आइटम जो है वो क्या और कहाँ से और कैसे बनता है, हु नोज। जिस तेल का धुआं आता है फ्राई करते वक्त, उसमें कैंसर के रेडिकल्स बनते हैं। बाहर का कौन सा ऐसा चिप्स वाला है जो 277 के नीचे ही टेम्परेचर रख के तेल को फ्राई करते रहेगा, बताओ? वो तो अपना जितना तेल में 5 बार 10 बार 20 बार जितना घुमाएगा, उतना जब तक तेल काला नहीं होता है तब तक वो तलता रहेगा उसके अंदर, और आपको फ्रेश टिप्स के नाम से बेचता रहेगा वो। उसको क्या पड़ी आपके कैंसर की रेडिकल्स की, क्या वो केयर्स? कौन सा तेल रिफाइंड है कि रॉयल फिल्टर्ड है, डबल रिफाइंड है, वो केयर्स पड़ा? इसलिए भक्त लोग जो होते हैं वो बाहर का खाना नहीं खाते, किसने बनाया पता नहीं है, कौन सी वस्तु से बनाया पता नहीं है, इसलिए घर से घर में ही जितनी वस्तुएं बनती है उसी में संतुष्ट होकर रहना चाहिए। तो आपको पता है क्या वस्तु आप ले रहे हो और कौन बना रहा है, बनाने वाले व्यक्ति भी मालूम है और वस्तु कहाँ से आ रही है वो मालूम है, और आपके घर में आइटम बन रहे हैं। लेकिन क्या है कलयुग का, सब लोग काम पे जाते हैं, किसी को टाइम नहीं है, तो डब्बे भरे हुए हैं घर में अलग अलग प्रकार के चिवड़ाओं से और वेफर से और इसमें से और कॉफी से, क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ जबान के लिए कुछ चाहिए नया नया आइटम, और बनाने को टाइम नहीं है, तो फिर वो सब रेडीमेड भरा रहता है घर रेडीमेड चीज़ से, सब बासी अन्न जो है रेडीमेड के रूप में हम लोग खाते रहते हैं, उसका भी परिणाम हमारे सेहत पे होता है। विचार करना जरूरी है, लोगों के बाल 20 साल की उम्र में क्यों पक रहे हैं, सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, 20 साल के लोगों को हार्ट अटैक क्यों आता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज क्यों होता है, इसके उत्तर सब इसमें छुपे हुए हैं, सब उत्तर इसमें छुपे हुए हैं, हमारे खाने पीने की और रहने की जो आदतें हैं उसमें छुपा हुआ है सब कुछ। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, और कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हाँ टाइम नहीं है, वो सब टीवी देख रहा हो, खाना खा रहा है, उसको बराबर चबा भी नहीं रहा है, वो इज जस्ट ईटिंग, ईटिंग इज नॉट इंटरेस्टेड, यू नो, इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। टीवी इज इम्पॉर्टेंट और मोबाइल इज इम्पॉर्टेंट और व्हाट्सएप इज इम्पॉर्टेंट, सारा ध्यान अलग चीज़ में है और भोजन चल रहा है, तो वो भोजन का पचन और शरीर को पोषण नहीं होता है, समय पर नहीं खाते हैं, देर से खाते हैं, सुबह 11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 5 बजे लंच लेते हैं, रात को 1 बजे डिनर खाते हैं, तो कैसे उसका शरीर को पोषण होगा? उसका भी समय बताया गया, जितना सूर्यास्त के बाद जल्दी खाना खाया जाए उतना अच्छा है, और दिन में जो खाना खाते हैं उसको अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, तो सूरज के होने से अच्छी तरह से हजम होता है उसका, रात में कम खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से खाना चाहिए, क्योंकि सूरज उसमें अच्छे प्रभाव में रहता है भले बारिश का मौसम। तो ये दिनचर्या जो हमारी ना वो इतनी बिगड़ गई है, तो उसका हेल्थ में परिणाम होना ही होना है। आप एबनॉर्मल लाइफस्टाइल जी के नॉर्मल हेल्थ की अपेक्षा नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव नॉर्मल लाइफस्टाइल टू एक्सपीरियंस नॉर्मल हेल्थ। हरे कृष्णा। हाँ, रिफाइंड ऑयल से ऑयल की शक्ति कम हो जाती है, रिफाइंड ऑयल को रिफाइनिंग प्रोसेस के अंदर कम से कम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तपाया जाता है और 10 मिनट के अंदर ठंडा किया जाता है, ये रिफाइनिंग की प्रक्रिया है, हमको पता ही नहीं रिफाइनिंग क्या होता है। रिफाइनिंग में एक बार तेल का टेम्परेचर 277 से ऊपर गया तो उसके अंदर फ्री कैंसर रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं, इसलिए रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए बहुत खराब है, भले मूंगफली का हो, सूर्यफूल का हो, किसी का भी हो। इसलिए मैं जो तेल यूज करता हूँ वो केवल मैक्सिमम फिल्टर्ड होता है, तो बिना फिल्टर के भी मैं गांव से लेके आता हूँ, कम तेल वापरते हैं लेकिन गांव से लेके आते हैं, जहाँ हमको पता है ये एक्चुअली वो कोकोनट का प्रेस करते हैं, तेल निकालते हैं, वहाँ से लेके आते हैं उसे। तो रिफाइंड तेल बहुत हेल्थ के लिए ख़राब होता है। इज इट शॉकिंग न्यूज फॉर यू? नहीं ना, गुड, ओके, थैंक यू वेरी